चोपड़ा ज्वेलर को विजिट करो, दुबई से बेहतर है गोल्ड, जड़ाऊ जेवरात, डायमंड, जड़ाऊ डायमंड ज्वेलरी, चूड़ियां, कड़े, पेंडेंट, हर जेवर यूनिक है और बेशुमार वैरायटी है। मजे की बात है डिस्काउंट्स भी बहुत सारे हैं। किस किस का बताऊं? सीइंग इज बिलीविंग।
एड्रेस दें।
1066 एल्बियन रोड, एल्बियन इज़लिंगटन की नुक्कड़ पे। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलेक्शन, चोपड़ा ज्वेलर्स। 416-744-7534 कनाडा में दुबई, चोपड़ा ज्वेलर्स।
Amex Travels 5-star हज packages। आप हज पे जाना चाहते हैं? Confusing हज app के हाथों परेशान मत हो, नियत आपकी बुलावा रब का, इंतजाम और एहतमाम Amex Travel का। एयर टिकट्स मदीना, मक्का, मिना टेंट्स, अरफात कैंप, हरम के सामने होटल की सहूलत से लेकर डॉक्यूमेंटेशन, वीजा, हर चीज सिर्फ Amex Travels के साथ। लिमिटेड सीट्स, कॉल Amex Travel।
Elite Hajj 2025 packages exclusive, special deals for US, Canadian, Pakistani passport holders. Limited seats.
Book now. Call 416-599-5200. 416-599-5200.
मोमिन हलाल मीट एनिवर्सरी सेल। आप लोगों ने बहुत तआवुन किया, इस खुशी में हर चीज सेल के ऊपर है।
ताज़ा सब्जियाँ, फल, मसाले, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड गोश्त और किचन की जरूरत का सब सामान, वो भी डिस्काउंट सेल प्राइस में। ओपन 7 days अ वीक। विजिट करें मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी,
1010 ग्रीन क्रेसेंट इन मिसिसागा, जस्ट नॉर्थ ऑफ एग्लिंटन, ऑन टेरी फॉक्स।
पियाना घराना, मौसिकी का गहवारा, संगीत की रूह, खालिस देसी अंदाज, गजल गायकी और शास्त्रीय गीत संगीत पर जिनकी है गहरी पकड़, पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान और दुनिया भर में अपने फन का मुजाहिरा कर चुके उस्ताद हामिद अली खान साहब।
गुजर गया।
परफॉर्मिंग ऑन December 1st, 2024, 6 p.m. at Courtyard Marriott, 90 Biscayne Crescent, Brampton, Ontario. For tickets and sponsorship, please contact 416-732-6660.
बिरयानी तो ठीक है, लेकिन भाई डिनर मीठे के बगैर अधूरा होता है। कोई देसी मीठा नहीं है?
अब्बू, कनाडा में आके भी आपका देसी मीठे का शौक नहीं गया?
क्यों ना जाए, मुल्तानी डिलाइट सोन हलवा है ना, ताज़ा कनाडा में बना और बिल्कुल वैसा ही जैसे बैक होम में मिलता है।
हाँ, अब डिनर पूरा हुआ।
मुल्तानी डिलाइट सोन हलवा, हर खाने के बाद मिठास भर दे। GTA में देसी ग्रोसरी स्टोर्स पे दस्तयाब या ऑनलाइन ऑर्डर करें। आज ही विजिट करें multanihalwadelights.com, 416-270-4439, 416-270-4439। मुल्तानी डिलाइट सोहन हलवा, ऑलवेज फ्रेश।
ग्रिल इन द हार्ट मिसिसागा में ऑर्डर वाया फोन, इमरान भाई को कॉल करें।
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 9054058383। ग्रिल इन द हार्ट।
वेलकम बैक तमाम सामीन जो मैं 770 AM डायल पे तो अब नहीं सुन रहे, मुझे मालूम है नंबर पर 6478724900 और हमें ई आवाज टीवी पर देख रहे हैं और हमें eawaz.com हमारी वेबसाइट पर भी देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज भी आपका दिन जो गुजर रहा है इख्तिताम की तरफ है वो अच्छा ही गुजरा होगा और आप अपनी फैमिलियों के साथ खुशखुर्रम और सेहतमंद भी होंगे। कुछ सेहतमंद लोग हमारे ऑफिस में भी मौजूद हैं, आपको मालूम है देर इज नन अदर देन नहीं बोल रहा जो वही रंगारंग खबरें लेकर आ रही हैं आजकल आपकी जिंदगी में रंग भर रही है, बाहर ठंडी हो रही है, डिप्रेशन हो गई है, हर तरफ मारामारी चल रही है। कोई आदमी जो है वो हाईवे पे 401 हाईवे पर जो है सुना है कि गोलियां चलाता फिर रहा है, लोगों का संतुलन बिगड़ गया है। तो इस संतुलन का सही करने के लिए एक सही संतुलन वाली खातून, दिमागी संतुलन, वो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है। आइए उनको प्रोग्राम में प्रॉपर तौर पे खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
WS तुम ये आजकल मेरे खिलाफ क्या बातें कर रही हो, ये क्या हक में कर रहे हो, ये हक में बात है
हा?
कि ये तुम मेरी टांगे खींच रहे हो, हालांकि तुम खींच सकते हो नहीं,
नहीं, नहीं
मेरी इतनी मोटी टांग है कि तुम खींच सकते नहीं हो।
मैं तो दो हाथ मिला भी लूं तो टांग नहीं कर
और वैसे भी मरी सी तुम्हारी जान है, वो टांग अगर तुम्हारे ऊपर आ गई तो तुम्हारा तो सांस निकल जाना है। तो तुम ऐसे
जन्नत में चले गए, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे
जी।
क्या
मेरे उसके ऊपर गिरने से वो नहीं मैं
ये अब आप वो कह रही ना क्या आप वर्ड करती है डोंट गिव एक्सप्लेनेशन क्या होती है जरूरत नहीं है
नॉनसेंस
जो हो गया वो हो गया।
नहीं नहीं नहीं
रॉबर्ट अब तो हो गया
नहीं रॉबर्ट ये तुम्हारी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है।
अच्छा ये सही नहीं है मगर
मेरे गिरने से वो नहीं मरा
अब ये तो
अंटिल उसको अंदरूनी चोटें आई हो।
चलो मैं इसको रिफेस कर अलेजली एक वर्ड यूज करती है जिसके ऊपर सवालिया निशान या डॉट लगाते हैं वो वाली न्यूज है।
नहीं नहीं हो सकता है, वैसे मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, हो सकता है कि मेरे उसके ऊपर गिरने से अंदरूनी चोटें आई हो।
नहीं दिख रही है,
दिखी नहीं,
दिमाग लगी अंदर
बेचारा जो इंटरनल ब्लीडिंग की डेथ हो गई। तो बस फिर इसमें तुम्हारे लिए सीख है, आमिर हमारे लिए सीख है, इसमें सीख ये है कि मेरे साथ पंगा मत लो।
नहीं, नहीं, नहीं।
अगर मैं जो है मैं और वो तो फिर भी जो है ना कोई सह गया तुम्हारे ऊपर तो मैंने हाथ रख दिया ना तुम्हारा सांस निकल जाना।
नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। अल्लाह आसानी करे और हमारे हक में बेहतरी करे।
हाँ तो जन्नत बस सिर्फ जाने की तैयारी करो तुम और कोई और मेरे साथ कोई और पंगा लेने की कोशिश ना करो। ठीक है
मैं पंगा कभी नहीं खाऊंगा वल्लाहि कुल्ला माफी तमाम मुश्किल
एक तो तुमने लिया हुआ है ना मेरे साथ प्रोग्राम करने का ये जन्नत कमाने के लिए
ये तो गुनाहों की तलाफी।
हाँ तलाफी है तो बस इसीलिए मैं कह रही हूँ बस यहीं तक रहो।
मैंने आपको बहुत सीधा बोल दिया था माजिद भाई से।
हाँ।
मैंने कहा देखिए आप इनके साथ किसी और को नहीं करने दीजिएगा।
मैंने
कहा भाई क्यों ऐसा क्यों फरमाइशी प्रोग्राम है तुम्हारा।
हाँ।
मैंने कहा देखें मुझे अलाउ करते हैं इनके साथ काम करने के लिए खासकर जो रेडियो शो है।
हाँ।
तो उन्होंने तफसीलात मालूम की भाई। हाँ। मतलब इतना तुम्हारी जस्तजू देखकर उनको भी और हैरत हुई जाहिर मैनेजमेंट पूरी परेशान हो गई कि कोई इनसे साथ काम करने को तैयार नहीं हो तू कह रहा कि मेरे साथ काम। मैंने कहा वो मसला ये कि मैं कुछ हालात अपने बेहतर करने के लिए दुनियावी
जन्नत कमाने के लिए कर रहा हूँ
मामला तय हो जाए तो मैंने कहा कि उनके साथ काम करूंगा। और मैंने कहा तायर भाई नहीं मुझे ये क्या बेटा इतना 12 घंटे मैं भुगतता हूँ 8-10 घंटे तू भी
भुगत इकट्ठे जन्नत जाएंगे
इकट्ठे जाएंगे आगे तो वही है ना बड़ा प्लॉट तो
नहीं कर
हमने तो छोटी सी झोपड़ी लगानी।
हाँ बिल्कुल सही है
तो, ये है
तो बस मैं इसीलिए
मैं खिलाफ कभी भी नहीं
हूं। नहीं नहीं तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते
नहीं,
अफोर्ड ही नहीं कर सकते है ना
बिल्कुल नहीं।
हाँ चलो ठीक है ओके जी चलो
तो क्या मारामारी चल रही है आज सारा दिन जो है खबरें आती नहीं चाहिए थोड़ी सी बात करते हैं।
मुझे तो लग रहा था पाकिस्तान को उन्होंने सीरिया समझा हुआ है।
अफसोस मुझे सबसे ज्यादा जो कुछ हुआ उस पर तो अफसोस चाहे पुलिस ऑफिसर्स मरे रेंजर्स का बंदा मरा मरा इसके अलावा भी अफसोस
रेंजर भी पुलिस वाला भी तो किसी का बेटा है ना भाई
मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का जो आपसे इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आपका ताल्लुक
जर्नलिज्म से सुमुन बुकमुन बने
इन सबको तो बंद कर देना चाहिए अपने अपने चैनल्स और इन्होंने साबित कर दिया पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम जितने भी चैनल्स हैं जितने भी लोग हैं कि भाईजान
जरूरत ही नहीं है ना जरूरत ही नहीं है जरूरत ही
जरूरत नहीं वो जो आप बात करती है ना एक जर्नलिज्म जो एक जरूरत का
जरूरत का काम है जो मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि बेटे अगर अगर जरूरत है तो जर्नलिज्म शुरू करना वरना नहीं शुरू करना नहीं वरना नहीं करना
सब जो है वो डरे रह गए मतलब एक्सपोज हो गए एक तरीके के
मतलब है दो पैसे की अपनी नौकरी के लिए इन्होंने कहा जी जर्नलिज्म की ऐसी तैसी सच तो हमको बोलना नहीं है हमको नहीं बोलना है सच
सैड वेरी सैड और जो हुआ वो तो बाकी बहुत सैड है।
100 बंदे मर गए हैं यार 100 बंदा
ज्यादा ही होंगे तो अभी जो बातें हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले ही प्रोग्राम में कि बेसिकली वो जो आप बात कर रहे थे मतीउल्ला जान साहब की,
वो उन्होंने हम दिखाएंगे, वो क्लिप हम दिखाएंगे,
जो लाशें जो उन्होंने बताया वहां की रिपोर्ट भी उन्होंने ली
जी जी, वो हम
दिखाएंगे, वो आगे चल के शामिल करेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जी वो 100 बंदा मरा है तो 100 जनाजे होने चाहिए, 100 कब्रें होनी चाहिए, तो वो कहां है, तो सैड है, मतलब
जाके देखो तो सही लोगों के
तो जिस तरीके से अंधेरे में क्योंकि लाइटें आपको ही मालूम है जिस तरीके से बंद कर दी गई,
पूरे इस्लामाबाद की सारे ऑफिसेज, सारे
दफ्तर जो है बाकायदा उनको बंद कराया गया, इस्लामाबाद में उनसे कहा गया कि जनाब आप जबरी लाइटें बंद करें, इवन क्या
घर वालों को कहा, हाउसेज जो थे यानी जो उनको बिजनेसेस तो कह रहे हैं ये लोगों के जो अपने प्राइवेट होम्स है उनको भी कहा लाइटें बंद कर दें, सब लाइटें
स्ट्रीट लाइट्स आपने बंद कर दिया, उसमें कितने लोग कहां आपने गोलियां चलाई, किनको मारा,
और सबकी वीडियोस हैं, सब चीज हर चीज की
उठा के ले गए उनको,
हम रोज एक एक दिखाएंगे, अब रोज
गायब करने की हिस्ट्री तो अभी तक कई पाकिस्तान के लोग हैं वो गायब हैं, पिछले सालों से गायब नहीं मिलते, तो ये 150 लाशें जो हैं खुदा ना खास्ता वो गायब करना आपके लिए मसला नहीं है,
कर्मा जो है ना बहुत बैड चीज है, कर्मा कम्स एंड बाइट्स यू, जो आपने किया ना ये मैं आज यहाँ पे आप आज की तारीख आज November 27, 2024 है ये आप लिख के रखे, नफरत तो इस जो कॉकटेल ये जो गवर्नमेंट ऐसे थी लोगों को, इस कॉकटेल गवर्नमेंट के लोगों का क्या अंजाम होएगा आप लोग खुद देखना, आपको पता है कि जिस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी ना आमिर, तो उस वक्त वो जो फ्रेंच रॉयल्टी थी ना वो कहती थी ओ जिस किसी ने हमारे खिलाफ कुछ किया ना हम उसको नहीं, वो एक प्रिज़न था उसका नाम था बैस्टिल, तो हम उसमें डाल देंगे, तो वो जो था ना एक बड़ा ही लोगों के यहाँ कालकोटड़ी की तरह का वो एक बड़ा खतरनाक वो चीज समझा जाता है, जिस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन आई ना लोगों ने एक तो रॉयल्टी को बालों से खींच के उसमें से निकाला उनके पैलेसेस में से और उनके गले काटे जिसको गिलोटीन कहते हैं, गिलोटीन किया, और सबसे पहले उन्होंने जाके हमला किया उस बैस्टिल के ऊपर, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, हाँ तुम जो बड़ा हमें डराते रहे हो कि इसमें तुम काल कोठड़ी में डाल देंगे और तुम लोग सड़ सड़ के मर जाओगे, वहां के कीड़े और चूहे तुम्हें खा जाएंगे और तुम्हारी ऐसी, उसको उसके ऊपर चढ़ के, हालांकि जिस वक्त आपको बड़ी हंसी आएगी ये सुनकर कि जिस वक्त बैस्टिल में गए टोटल 7 प्रिजनर्स थे वहां पे, कैन यू इमेजिन 7 प्रिजनर्स, और रॉयल्टी ने वो उसकी वो
हाइप क्रिएट
किया, हाइप और इतना डर पैदा किया हुआ था और लोग कांपते थे ओह कहीं बैस्टिल में नाम चले जाए, पता नहीं क्या है वहां पे, जिन भूत है, सांप है, डड्डू है, क्या है वहां पे जो हमें खाए, तो ये जनाब कर्मा जो है ना ये हाँ ये आपने मुल्क को गाजा या सीरिया समझा है, आपने बनाया है, कर्मा विल कम एंड बाइट यू, मैं तो आप लोगों को कुछ
बिल्कुल 100% एग्री, ये आपकी बात 100% सही है
जी,
ये कहीं ना कहीं कभी भी आ जाएगा,
हाँ आपने लोगों के बच्चे मारे हैं, आपने
औरतें
आपने जिनको मारा है उन माओ की आपको क्या लगता है कि आपको बदवाएं नहीं लगेंगी, आपको उन लोगों की बदवाएं लगेंगी और आप लोगों का जो हाल होएगा आप देखना कि आपका श्रीलंकन से फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त रॉयल्टी का जो हाल हुआ था या जो अभी बांग्लादेश में उससे भी बुरा आप लोगों का हाल है, आप लोगों ने पीटीआई की जो वो लोग हैं उनको मार के नहीं भगाया, आपने अपने नाम का डेथ वारंट लिखा है खुद अपने हाथ से, अपने हाथ से आपने समझा कि हम भी बशार अल असद हैं और हम भी अपने लोगों को मार सकते हैं यार, फिर आप कहते हैं जी हम डेमोक्रेसी चला रहे हैं, जो आपने किया है इंशाल्लाह कर्मा
इस पे, बिल्कुल सही कह रही हूँ, इस बात पे फिर हम आगे बढ़ जाते हैं कि मैं तमाम ऐसे जो जिन लोगों ने कराया है, मैं किसी के ऊपर एक पे पॉइंट नहीं कर रहा,
नहीं हम तो नाम ही नहीं ले रहे,
एक पॉइंट नहीं लेते, जिन्होंने भी ये कराया है उनको से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि यार अल्लाह के अजाब से डरो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ
अल्लाह की लाठी भी आवाज है ना,
अल्लाह के अजाब से ना डरें लेकिन अल्लाह के इंसाफ से डरें, क्योंकि अजाब तो शायद वो टाल देगा लेकिन इंसाफ, क्योंकि अगर किसी एक का भी नाहक कोई ज्यादती हुई है इंसान के साथ, वो अपने माफ करने वाला अपनी जात से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो शायद आपकी माफ कर देगा, लेकिन अगर किसी इंसान के साथ ज्यादती हो गई है जिसको कहते हैं ना जब वो इंसाफ करने पे आएगा तराजू में तोलेगा, उस चीज से डरना हमें चाहिए।
ये सूरह माउन में लिखा है ना, खुद सूरह माउन में लिखा है रब ने कि मैं चाहूं तो अपने हकूक माफ कर सकता हूं, लेकिन लोगों के अपने बंदों के हकूक आपको माफ नहीं करूंगा जिस वक्त तक वो खुद आपको माफ ना करे, ये तो कुरान में है ना, हम तो मैं और आप तो उसको क्या चेंज करेंगे, हम तो नहीं चेंज कर सकते उसको,
बिल्कुल
राइट,
आसानी करें,
चले जी हम आपको दिखाएंगे, अब हम रोज आपको एक एक वीडियो दिखाएंगे जो कुछ जुल्म हुआ है इस्लामाबाद में, जो सीरिया आपने बनाने की कोशिश की है जिस किसी ने भी, वो हम आपको दिखाएंगे, आज भी एक दिखाएंगे, कल फिर दिखाएंगे, हम दिखाएंगे अब इस तरह एक एक आपको वीडियो एंड यू डिसाइड। अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय लीजाज कॉस्मेटिक्स। इनकी सेल जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की चल रही है, 80% ऑफ है और टॉप ब्रांड्स हैं यहां पे। जैसे कि हमने आपको बताया, सैटरडे को 9 से 6 पीएम, संडे को 10 एएम से 6 पीएम और मंडे से फ्राइडे जो है 10 एएम टू 8 पीएम है। ये है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम में, आप जाएं और एंजॉय का मजा लें। इसके अलावा जनाब आप राजा बादशाह जी के पास जाएं, वो कहते हैं जी अगर आपको होम और ऑटो इंश्योरेंस चाहिए बहुत ही अफोर्डेबल, तो मैं आपको बिल्कुल राइट इंश्योरेंस लेकर दूंगा। तो राइट इंश्योरेंस क्या होती है वो लेने के लिए आपको राजा बादशाह जी के पास जाना पड़ेगा। उनका नंबर है 6472903773। इसके अलावा जनाब विलेज टेस्ट, ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट लाल पाकिस्तानी बफे, दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं, आप इनको कॉल कर रहे हैं किसी भी एक पे, या तो 9052323663 मिसेज सागा या 9052262294 ओकविल में कर लें और एंजॉय का मजा लें। और जनाब हज पैकेजेस जो है एमएक्स ट्रेवल्स वाले दे रहे हैं और कह लें जी बड़ा जबरदस्त किस्म का हम आपको पैकेज दे रहे हैं। अगर आपको जाना है हज करने के लिए, जो स्टार्टिंग जो पैकेज है वो 9500 पर पर्सन है, तो आप जाएं और आप इनसे ये आपका वीजा वगैरह सब कुछ जो है वो करके देंगे। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर होने चाहिए। इनका नंबर है 4165995200। ठीक है जी, तो हम अब अपनी खबरें शुरू करते हैं। अच्छा जनाब, कल हमने आपको बताया था कि ट्रंप साहब जो है वो कह रहे हैं कि मैं 25% टैरिफ्स लगाऊंगा, तो इसके ऊपर आज जो लीडर्स ऑफ मैक्सिको और कनाडा है उन्होंने फिर से आज बड़ा किया। कल तो हमने आपको पूरी की पूरी ट्रूडो साहब की सुना दी थी कि वो क्या कहते हैं इसके ऊपर, तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि मैक्सिको की जो प्रेसिडेंट है अभी जो रिसेंटली चूज की गई है क्लॉडिया शीनबॉम, उन्होंने जो है एक न्यूज कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं इनको लेटर लिखूंगी और मैं इनको बताऊंगी कि आप जो ये टैरिफ्स लगा रहे हैं ये बिजनेसेस को आप रिस्क करेंगे, दोनों तरफ दोनों मुल्कों में इसकी वजह से जॉब लॉसेस होंगे। ट्रूडो साहब जो हैं आज प्रीमियर्स के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे प्रीमियर्स ने कहा जी कि भाई इसका जो है आप जरा जो है इसके ऊपर कुछ करें। आपको बताइए कि ट्रूडो साहब ने तो एक पूरी कमेटी बना दी है ट्रंप साहब के आने से पहले ही कि उनकी गवर्नमेंट के साथ कैसे किया जाएगा। प्रीमियर फोर्ड जो है आज हमारे, उन्होंने कहा है कि हमको बिल्कुल जो है वो रिटेलिएट नहीं करने की जरूरत है, लेकिन ये जो कुछ भी इन्होंने किया है ये बिल्कुल इनकी रॉन्ग कॉल है। और उन्होंने यानी कि कहा है प्रीमियर फोर्ड साहब ने कि अमेरिकन के अगेंस्ट हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका फैसला ठीक नहीं है। पीएम पॉलीएफ साहब ने इस मौके पे कहा है कि ट्रंप साहब जो है इंतहाई अनजस्टिफाइड थ्रेट दे रहे हैं जबकि कनाडा की ऑलरेडी श्रिंकिंग और वीक इकोनॉमी है। जगमीत सिंह साहब ने कहा जी कि ट्रूडो को स्टैंड अप करना चाहिए और फाइट करना चाहिए लाइक हेल, और क्योंकि उसकी वजह यह है कि कनेडियन जॉब्स जो हैं वो एट स्टेक हैं। यूके ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम इनकी जो बड़ी आइकॉनिक गुड्स हैं यूएस की, जैसे कि हार्ली डेविडसन मोटरबाइक्स और चीजें हैं, तो हम बिल्कुल रिटेलिएटरी टैरिफ्स इनके ऊपर लगाएंगे। तो ये जो है दुनिया जनाब भड़क गई है इनकी बात पे, अभी इन्होंने जो है वो संभाली भी नहीं है कुर्सी। तो उस पर डोमिनिक लेब्लांक जो है मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी, उन्होंने आज कहा जी कि कनेडियन गवर्नमेंट एक इन्वेस्टमेंट्स कर रही है $1 मिलियन की टू प्रिवेंट गन क्राइम्स, और इसके अंदर जो कम्युनिटी बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम ये करेंगे। ये जो गन्स हैं इनके ऊपर बड़ा ही ये वायलेंस हो गई है, वो कहते हैं जी कि ये गन गैंग वायलेंस जो है ये जो हुई है एलएसपी गोटो फर्स्ट नेशन के अंदर, उसके लिए हम इनको सबको जो है वो उसके लिए ये कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि हमने जो यहां पे जब छापे मारे तो 2000 मॉडल्स ऑफ असॉल्ट स्टाइल जो फायर आर्म्स हैं वो हमको मिले हैं। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि शॉर्ट गन्स हैंड गन्स भी मिली हैं, और ये जो दो राइवल ग्रुप्स थे गैंग्स जो थे इनके बीच में लड़ाई हो रही थी और एक गैंग जो था हेल्स एंजल्स उसके साथ जो हैं वो उन्होंने ये इसके अंदर इन्वॉल्व थे लड़ाई में, और काफी सारे जो हैं उन्होंने ये आर्म्स यूज किए हैं। तो ये अब जनाब गन प्रिवेंशन के यहां पे क्लॉजेस आ रहे हैं। दो कनेडियंस जो हैं जी वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो है बड़ा ये जो इंडियन गवर्नमेंट है ये इसका हमको उन्होंने नो फ्लाई जोन पे डाला हुआ है। इसके अंदर एक जो है परवारकर सिंह दुलाए हैं और दूसरे जो हैं भगवत सिंह बरार हैं, और ये दोनों दोस्त हैं और ये एक्टिविस्ट हैं और खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी कि खासतौर पे दुलाए साहब के मेरा 6 ईयर का लीगल बैटल यहां पे कनाडा में चल रहा था और फाइनली मुझे एक इलेक्टेड जो मेंबर है यहाँ पे, उसने कहा कि तुम क्यों नहीं इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मिलते, सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलते हो और उसको कहते हो कि मुझे जो है नो फ्लाई जोन से निकालो? तो वो कहता है जी मुझे बड़ी हैरत हुई है कि हमारे जो कनेडियन सिस्टम्स के अंदर कितना ज्यादा मैनिपुलेशन है इंडिया का। और जो भगवंत भगत सिंह साहब है वो भी यही कहते हैं कि भाई ये हमको भी जो है ये बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने रखा हुआ है और मैं तो फ्लाई नहीं कर सक रहा 2018 से। अब वो कहते हैं जी ये दोनों के हम कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर से मिलेंगे और हम उनको बोलेंगे कि ये जो हमको रखा हुआ है अंडर सिक्योर एयर ट्रेवल एक्ट, इससे हमको निकालें। और लेकिन जो मिनिस्टर साहब हैं वो कहते हैं जी कि हमको पता चला है कि अगर इन्होंने कभी भी ट्रैवल किया तो ये टेररिज्म कमिट करेंगे। तो अब खालिस्तान के मुद्दे और ये तो जो है जनाब ये अब पता नहीं कब खत्म होएंगे, खत्म होने का तो नाम नहीं ले रहे। कनाडा जो है, कैनेडियंस जो हैं वो और ज्यादा अपने ऊपर डेट्स जो हैं वो डालते जा रहे हैं और क्रेडिट कार्ड के लोन्स जो हैं उनके ऊपर बहुत चढ़ते जा रहे हैं और वो मिस करते जा रहे हैं और उनका जो ये हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग आ गया है उसकी वजह से जो है ये पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। एक नए रिपोर्ट आई है बाय इक्विफैक्स एंड ट्रांस यूनियन, उन्होंने कहा जी कि कंज्यूमर डेट जो क्वार्टर थ्री थर्ड क्वार्टर में था 2024 को वो रिकॉर्ड हाई है 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स को टच कर रहा है, विच इज 4.1% इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर। कंज्यूमर्स जो है वो बेतहाशा डेट्स ले रहे हैं और डिलिंक्वेंसीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, दे आर अप 2% कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसी तरह 1.3 मिलियन कंज्यूमर्स जो है उन्होंने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स मिस की हैं थर्ड क्वार्टर में और 10.6% ये राइज शो करता है 2023 से। तो भाईजान सोच समझ के खर्चा करो, जितनी चादर है उतनी जो है वो पैर फैलाओ, ज्यादा उससे ना करो। ट्रंप साहब ने जनाब आज एक और इंडियन को चूज किया है जनाब, ही हैज चोजन हेल्थ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर जय भट्टाचार्य, 56 इयर्स इनकी एज है और बड़ा ये पेंडेमिक लॉकडाउन और वैक्सीन जो हैं उनको बहुत ज्यादा ये जो है क्रिटिसाइज करते थे। ही हैज चोजन हिम टू लीड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये एक फिजिशियन और प्रोफेसर हैं जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के अंदर पढ़ाते हैं और ये काम करेंगे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के साथ। भट्टाचार्य साहब जो हैं कोलकाता में पैदा हुए थे और फिर उन्होंने मेडिकल जो डिग्री थी वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1997 से ली थी और उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स में जो पीएचडी किया था वो भी स्टैनफोर्ड से किया था 2000 के अंदर। इसके अलावा ट्रंप साहब ने जिम ओ'नील जो हैं उनको जो एचएचएस ऑफिशियल थे फॉर्मर और सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर हैं उनको डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ एजेंसी जो है वो भी चूज किया है और वो ओवरसी करेंगे मेक अमेरिका हेल्दी अगेन जो इनके ऑपरेशंस हैं वो। तो जनाब मोर और लेस जो है बेतहाशाई ट्रंप साहब की कैबिनेट में इंडियंस आ गए हैं, लेकिन जाहिर है कि ट्रंप साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है। इंडियंस इंतहाई पढ़े लिखे टॉप क्लास जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं अमरीका की उनके पढ़े हुए हैं और इंतहाई काबिल लोग हैं और साढ़े बंदे जड़े ने वो पावे खा रहे हैं ते चिकड़ छोले खा रहे हैं ते बच्चिया नू जड़ा है वे बस वो छोटियां मोटिया जॉब्स लगाई हुई ना उनको कोई ये है कि हमने पढ़ाना है। ये जो लोग हैं कभी आप डॉक्टर भट्टाचार्य की फैमिली की कभी अगर आप स्टोरी सुने तो कितना इनके पेरेंट्स ने जो है वो सेक्रीफाइस किया है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। जैसे कि जो ऋषि सुनक के पेरेंट्स हैं ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बच्चों को पढ़ाते हैं वो अपना दिल अपने खर्चे काट के जो हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर माशाल्लाह बच्चे फिर जो इसीलिए जो है इतनी बड़ी पोजीशंस में पहुंचते हैं। तो बहुत ही काबिल स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए फिजिशियन हैं और उनको किया, शायद काश साढ़े पाकिस्तानियों को भी शर्म आ जाए थे वो भी कोई बच्चियां अच्छी यूनिवर्सिटियां पढ़ा, लेकिन जाहिर है उनको तो मिलियन डॉलर का घर चाहिए और लैम्बोर्गिनी चाहिए, उनको तो हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना है। यहां पे तो सोचिए मेरे कोल ते जी अगर होवे एक मिलियन डॉलर तो मैं कार ना ले ला मिलियन डॉलर दा या मैं अपना कोई बिजनेस ना शुरू कर ला जे। और हिंदू का यही डिफरेंस है हिंदुओं में, उनके पास मिलियन डॉलर होंगे तो वो बच्चे को स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड में पढ़ाएंगे, हमारी ऐसी सोच ही नहीं है। तो जाहिर है दैट्स वाई वी आर नोवेयर। ठीक है जी। अच्छा जनाब आज की जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर है वो ये है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो है वो हो गया है सीज फायर, हो गया है सीज फायर की डील जो है वो हो गई है और उसमें अब जो लेबनान में लोग हैं वो वापस आने के शुरू हो गए हैं। ये डील जो थी ये ब्रोकर की है यूएस ने और फ्रांस ने। इसराइल जो है उसने बेतहाशा अटैक्स किए थे लेबनान पे सिंस अक्टूबर 2023 और उसमें तकरीबन 3823 लेबनीज जो है उनकी डेथ्स हुई थी। तो अब लेबनीज जो आर्मी है उसको कहा गया है कि आप इंश्योर करें कि ये सीज फायर अब कायम रहे और आप साउथ ऑफ कंट्री की तरफ जो है अपनी मिलिट्री जो है उसको डिप्लॉय करना शुरू करें। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों ने इस मौके पे कहा जी कि ये डील जो है ये ओपन करेगी पैथ टू एंड फाइटिंग इन गाजा एज वेल। इसके साथ साथ यूएसए के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन साहब हैं, उन्होंने भी कहा है जी कि यूएसए जो है उसने अब रिन्यूड पुश फॉर गाजा सीज फायर जो है वो शुरू कर ली है। उन्होंने कहा जी कि बाइडन साहब बिल्कुल ये चाहते हैं कि ये जो है इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। जीशान उनकी तस्वीर दिखाएं जेक सलिवन की, तो वो जो है जेक सलिवन साहब वो कहते हैं जी कि हम अब काम करेंगे तुर्की, कतर और इजिप्ट के साथ मिलकर, और दूसरे जो रीजनल एक्टर्स हैं उनके साथ हम मिलकर बात करेंगे। जो बाइडन साहब हैं उन्होंने कहा है कि जी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि हम भी तुर्की के जो एर्दोगान साहब हैं उनके साथ अब बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये लास्टिंग जो सीज फायर है इस एरिया में भी आ सकता है कि नहीं। तुर्की जो है उसने कहा जी कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, हम आपके साथ हेल्प करने को बिल्कुल तैयार हैं, हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने को तैयार हैं ताकि गाजा के अंदर ये जो मैसेकर है इसको रोका जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हर तरह का हम के साथ कोऑपरेशन करेंगे ताकि ये सीज फायर एफर्ट्स जो हैं वो पुश की जा सकें गाजा के लिए भी। तो ये जनाब जो है बातचीत आज चल रही है, लेकिन अब पता नहीं अब गाजा में कब सीज फायर होगा। साउथ कोरिया का जो कैपिटल है जी सियोल, उसमें कहते हैं जी कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग नवंबर स्नोफॉल हुई है जो कि आज तक 1975 से पहले नहीं हुई थी, और वो उसमें भी रिकॉर्ड जो है वो स्नो यहां पे पड़ी है, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम रहा। 200 फ्लाइट्स जो हैं उनको ग्राउंड किया गया। मेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने कहा जी 7.8 इंचेस स्नो जो है वो सियोल में गिरी है नियर बाय एरियाज में। दो लोगों की ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर हाईवेज के ऊपर डेथ्स हुई हैं। इसके अलावा जो बेताशा डिब्री गिर रहा था बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन साइट से, उससे बेशुमार जो पेडेस्ट्रियन हैं वो भी सियोल के अंदर इंजर हुए हैं। आईसी रोड्स जो थी उसने मॉर्निंग कम्यूट को बहुत मुश्किल बनाया। थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स जो हैं इतनी सर्दी के मौसम में उनको बिजली नहीं मिल पाया, इसलिए कि दरख्त जो थे वो गिर गिर के टूट टूट के वो गिर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स के ऊपर, और तकरीबन सारा साउथ कोरिया जो है वो अंडर व्हाइट स्नो ब्लैंकेट है। ठीक है जी। मिडल ईस्ट से दो बड़ी खबरें। अबू धाबी ऑयल कंपनी जो है एडनॉक, उसने जनाब एक नई कंपनी लॉन्च की है XRG इंटरनेशनल लोअर कार्बन एनर्जी एंड केमिकल्स इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज, और आमिर साहब जरा इसका वैल्यू सुनो कितने इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, $80 बिलियन एडनॉक ने जनाब। ठीक है जी, सनू कितना चाहिए था? मिलियन कनेडियन डॉलर है, $80 बिलियन जी इन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। वो कहते हैं जी कि इसके ऑपरेशंस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में शुरू हो जाएंगे। ये फोकस करेगी कंपनी ऑन नेचुरल गैस केमिकल्स लोअर कार्बन एनर्जी सॉल्यूशंस, और ये दुनिया की टॉप 5 ग्लोबल केमिकल कंपनीज में से एक होगी। इसके अंदर वो प्रोड्यूस और डिलीवर करेंगे केमिकल स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स टू मीट 70% इंक्रीज इन ग्लोबल डिमांड बाय 2050, 15% इंक्रीज इन ग्लोबल नेचुरल गैस एंड 65% इंक्रीज इन डिमांड फॉर LNG बाय 2050। तो ये सारी डिमांड्स जो है जी ये पूरी करेंगे। सऊदी अरेबिया ने भी इसके साथ साथ जनाब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं इन मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में, एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज आल्सो वर्थ $9.3 बिलियन। ये इन्वेस्टमेंट जो है इन्होंने जो मेजर ग्लोबल कंपनीज है लाइक विदाटा ऑफ इंडिया एंड चाइनाज जीजिंग ग्रुप जो है उसके साथ वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इन रियाद जो कि आती है अंडर सऊदी नेशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, जिसका कि ये विजन है सऊदी विजन 2030, उसके अंडर ये सारी चीजें हैं क्योंकि ये डायवर्सिफाई करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को अवे फ्रॉम ऑयल। और इसमें वो कहते हैं जी आमिर साहब सोचो जरा बाय 2030 सऊदी अरेबिया कितना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, $100 बिलियन। वो कहते हैं जी कि इसकी इन्वेस्टमेंट आएगी सऊदी अरेबिया में बिकॉज ऑफ दिस। विदांता जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा जी रासुल खैर के एरिया में, जहां पे कि ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा सऊदी अरेबिया कॉपर प्रोडक्शन के अंदर। तो ये जनाब दो बड़ी खबरें हैं मिडल ईस्ट से। ठीक है जनाब। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ऑथेंटिक एंड फ्रेशली मेड हियर इन कनाडा मुल्तानी सोन हलवा। तो अगर आपको ये इसका ऑर्डर डालना है तो आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं, या कि आप multanihalwadelights.com पे जाके सारी डिटेल्स देख सकते हैं, और आप इनको कॉल भी कर सकते हैं @416-270-4439। एंड जनाब पायल ज्वेलर्स असलम भाई को फोन करें। असलम भाई कहते हैं मेरे पास जबरदस्त, हाँ असलम भाई उसको फोन करें, वो कह रहे हैं जी मेरे पास ज्वेलरी जो है हर तरह की है दुबई सिंगापुर इंडिया पाकिस्तान से, और अगर आपके घर में कोई भी छोटे बड़े इवेंट्स हैं आप इनको इनसे ज्वेलरी खरीद सकते हैं। इनका नंबर है 9057907879। एंड आमिर का फेवरेट रेस्टोरेंट ओपन माइक कैफे आमिर कहते हैं बड़ा डिलीशियस यहाँ पे खाना खा के रोज आते हैं यहाँ पे हर वक्त यानी कि हर वीकेंड पे जाते हैं और वो कहते हैं जी आप भी जाएं और एंजॉय का मजा लें। ठीक है जी, ओपन माइक कैफे का नंबर है 416-526-6800। ठीक है जी, ऐसे है। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई का जो प्रोटेस्ट था वो कॉल ऑफ किया गया और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा जी कि इंतहाई टफ डिसीजंस जो हैं वो लिए जाएंगे ताकि ये धरना पॉलिटिक्स जो है ये खत्म की जा सके। आज वो एड्रेस कर रहे थे फेडरल कैबिनेट की मीटिंग और उन्होंने कहा जी कि बिजनेसेस शट रहे, जो वर्कर्स और शॉपकीपर्स थे उन्होंने कंप्लेन्स की, स्टॉक एक्सचेंज जो था वो जो है आज जब सब चीजें वापस आ गई हैं 99,000 पॉइंट्स को वो क्रॉस कर गया है जबकि यस्टरडे 4,000 पॉइंट्स पे वो प्लंज किया था ड्यू टू राइट्स। वो कह रहे हैं जी कि इकोनॉमी को 190 बिलियन रुपीस डेली नुकसान हो रहा था और तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको पाकिस्तान को सेव करना है कि जो है ये धरने देने हैं और हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं जिस तरह का ऑनस्लॉट पीटीआई ने इस्लामाबाद के अंदर किया। तो अब दो ही रास्ते हैं, जाहिर है कि हम उसमें से डेवलपमेंट का रास्ता चुनेंगे और प्रोस्पेरिटी मुल्क में लाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी ये पीटीआई का जो सिट इन अगर आप लोगों को याद हो 2014 का था वो भी बहुत ही वायलेंट था, 126 डेज तक जारी रहा, यहां तक कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान विजिट करने वाले थे उन्होंने अपना विजिट पोस्टपोन किया था और ये हमेशा जो है केओस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एससीओ मीटिंग से पहले भी ये किया था और हमारे गेस्ट जो यहां पर आए हुए थे एससीओ के लिए उन्होंने काफी कंसर्न शो किया था कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है और अब जो है इन्होंने उस वक्त किया जब बेलारूस के प्रेसिडेंट थे। बहरहाल बेलारूस और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे अग्रीमेंट साइन होंगे लेकिन जनवरी के महीने में तो हम चीजों को आगे लेके चलेंगे, ऐसे है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तावर साहब ने जो है उन्होंने भी कहा जी कि पीटीआई का ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था ये बिल्कुल फेल होकर रह गया है और ये जो इनका डू और डाई जो ये प्रोटेस्ट था ये बिल्कुल अब खत्म हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात आज इस्लामाबाद में कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि दिस इज कॉलोसल फेलियर और इनकी जो है किस्मत फूट गई है और ये जो थी ये फाइनल कॉल नहीं थी, जस्ट मिस्ड कॉल थी। उन्होंने कहा जी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है उसको हमने कहा है कि कहा था कि आप लॉन्च करें क्रैकडाउन और केपी के जो चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर और खान की जो वाइफ थी बुशरा बीबी वो फिर गायब हो गई थी और फिर लेकिन जाहिर है थोड़ी देर के बाद फिर खबर आई थी पीटीआई के तैमूर सलीम खान ने कहा था कि ये दोनों केपी पहुंच गए हैं अलॉन्ग विद उमर अयूब। वो कहते हैं जी कि लोग यहां से भागते रहे, अपने कपड़े और जूते तक छोड़ के भागे और हमें पता चला है कि पीटीआई का प्लान था कि वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला करेंगे और रेड जोन में दाखिल होंगे लेकिन गंडापुर भाग गया दूसरी दफा, तो मैं इसको अली अमीन गंडापुर नहीं अली अमीन भगोड़ा बोलूंगा। तो ये उन्होंने कहा जी तारड़ साहब ने। गंडापुर साहब जो हैं वो उन्होंने आज बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि हम सिर्फ इस्लामाबाद से निकले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्रोटेस्ट खत्म हो गया, प्रोटेस्ट जारी रहेगा और सिर्फ इमरान खान साहब के पास अथॉरिटी है कि वो बोल सकते हैं हम अपना ये प्रोटेस्ट कब खत्म करेंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मानसेरा में कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि हमारी पार्टी को सीवियर ऑपरेशन का सामना था, हमारे मेंबर्स के खिलाफ बेसलेस जो केसेज हैं रजिस्टर किए जा रहे हैं, पीटीआई फेसेस कोएर्शन, हमारे लीडर जो है उसको जेल में डाला है, उसकी बीवी को इम्प्रिजन किया था इन्होंने, पीटीआई से ज्यादा और पीसफुल पार्टी कोई भी नहीं है, हमने हमेशा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है। और उन्होंने गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि वो पीटीआई को सप्रेस कर रही है, उन्होंने कहते हैं जी कि हम बार बार रैली की परमिशन मांगते थे तो हमको देते नहीं थे जो कि हमारा एक हक है पीसफुल प्रोटेस्ट और कोर्ट भी हमको जस्टिस नहीं दे रही है। पिछले तीन दिन से जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था जो नवम्बर 24 को शुरू हुआ था उसमें वो कहते हैं जी हमारे 8 मेंबर्स जो हैं उनकी डेथ्स हुई हैं और ये सारी की सारी डेथ्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने की हैं। गवर्नमेंट कहती है कि जी तीन रेंजर्स और तीन पुलिस वालों को पीटीआई ने मारा है, पीटीआई कहती है आपने खुद अपने लोगों को मारा है। पीटीआई के जो शौकत यूसुफ जई हैं लेकिन अलबत्ता उन्होंने कहा जी कि मैं बेइंतहा डिसअपॉइंटेड हूं जिस तरह से ये लोग लीडरलेस छोड़ के प्रोटेस्ट को आगे थे। अब गवर्नमेंट कहती है कि पीटीआई ने लोगों को मारा है, पीटीआई कहती है जी कि गवर्नमेंट ने मारा है। हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं, एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के मतीउल्लाह जान साहब, आपको पता ही है उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल चलाया है मतीउल्लाह जान चैनल टीवी चैनल, तो आप जरा देखें उसने लोगों से जिनके के भाई बच्चे जो मरे हैं, हम एक आपको उनका इंटरव्यू दिखाते हैं जो उन्होंने लिया है, तो वो आप देखें और फिर हम आगे जाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम, मैं शहीद मोहम्मद इलियास, मेरे भाई की डेथ हुई, मैं उसका भाई सफीर अली वाली इलियास बोल रहा हूँ। मेरे भाई को आज इन्होंने ये हमारी रिहायश जीतोटीन पे वहां पे ये पीटीआई की जुलूस जा रही थी तो ये रेंजर वाले और पुलिस वाले शेलिंग कर रहे थे, जब इनके पास ताकत खत्म हो गई तो ये वापसी पे भागने लगे, फिर इन्होंने लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने लगी। मैं इस चीज का खुद गवाह हूं कि मेरे सामने मेरे भाई के ऊपर रेंजर्स और पुलिस की چار بھی کو ڈالیں اور چار ٹرک ایک قیدی کی بھی نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، انہوں نے چڑھا چڑھا کے نا لوگوں کے اوپر، جس میں بھائی کی بھی اسی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ میرے سامنے ہوا ہے، میرے سامنے اور بھی ہزار لوگ تھے، اور بھی گواہ میں اس پہ ٹہرا سکتا ہوں. تو یہ میرے بھائی کی ڈیتھ ان کی وجہ سے.
کون سی لوکیشن؟
یہ اپنا 24 نمبر کے اوپر نیچے روڈ کے اوپر، یہ اپنا جی 14
رینجر کی گاڑیاں
مجھے اس کے اوپر لیبل لگی ہوئی ہے سر، لگا ہوا تھا رینجر، رینجر اور پولیس لگی ہوئی ہے نا، اور تو گاڑی ہوئی تھی نہیں، اوپر کنٹینر ادھر کنٹینر لگے تھے، یہ بھاگ کے جا رہے تھے. یہ جب واپسی کرتے وڈرال کر رہے تھے نا، واپسی جب واپسی کرے بھاگ رہے تھے وہاں سے، بھاگنے میں نے یہ ساری کاروائی کی. پھر سب لوگوں پہ گاڑی چڑھانی شروع کر دی.
وہاں پہ کس نے روکا؟
کسی نے، لوگ کرتے تھے نا آگے پیچھے کر رہے، لوگ روکنے کی کوشش کرتے، یہ روک تو نہیں رہتے، یہ بھاگ رہے تھے. تو بھاگنے میں جو بھی سویلین سامنے آتا ان کے اوپر گاڑی چڑھا رہے تھے، اور بھی لوگوں کو کر دیا. کچھ چھوٹے زخمی ہوتے ہیں، بڑے زخمی ہوتے ہیں. تو میرے بھائی کی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا.
آپ کا بھائی کیا کرتا ہے؟
میرا بھائی جو ہے نا، یہ 6 مہینے پہلے ایف سی سے ریٹائر ہوا ہے.
کہاں سے؟
فرنٹیئر کنسٹیبل سے ریٹائر ہوا ہے.
اچھا.
ہماری رہائش جی 13 میں.
تو وہ کیوں ادھر آیا ہوا تھا؟ ڈیوٹی پہ تھا کیا تھا؟
ڈیوٹی میں نہیں تھا، پریویٹ تھا. وہ اپنے پی ٹی آئی احتجاج میں آیا ہوا تھا ادھر. ہاں، روڈ پہ کھڑا تھا احتجاج، باقی سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے احتجاج اس طرف تھا. ہم تو ادھر سارے پرامن کھڑے تھے.
ابھی پولیس میں کیا رپورٹ درج کرائی آپ نے؟
رپورٹ میں میں نے ان کو بتایا، وہ مجھے بار بار پریشرائز کر رہے تھے، یہ پولیس والے ادھر جو بیٹھے تھے، کہ آپ اس طرح کی بیان نہ دیکھیں، اپنا کیوں اس طرح کی بات کر رہے. دیکھیں میرے ایک ہی بھائی میرا سگا، اگر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں اس کے باوجود بھی جھوٹ بولوں؟ کیوں بولوں اور کس لیے بولوں اور مجھے کیا چاہیے؟ تو یہ مجھے پریشرائز کرتے، آپ پولیس کے نام کیوں لیتے؟ میں نے جب خود دیکھے، میرے ساتھ گواہ بھی ہیں، تو کہتے ہمارا نام نہ لکھ لو آپ، پھر ہم اپنا خود اس میں مدعی باندھتے ہیں. میں نے کہا بنو،
کہتے ہیں ہمارا نام نہ لے.
یہ ادھر جو پولیس والے جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے سارے، مجھے اونچی آواز میں بولنا سننے شروع کر دیا، چپ کرو، یہ کرو، وہ کرو. میرے
کیوں؟ پولیس پہ الزام تھا؟ کس پہ الزام تھا؟
میرا دونوں کی گاڑی تھی وہاں پہ.
اچھا،
دونوں کی گاڑی تھی وہاں پہ، پولیس کی گاڑی بھی تھی اور رینجر کی گاڑی بھی تھی. بہت سے لوگوں نے دیکھے، میں اس کے اوپر ہزار گواہ تو ٹھہرا سکوں.
وہاں پہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ہوگا
میرے خیال میں، یہ جو اپنا میٹرو اسٹیشن ہے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، میں بھی ہوگا شاید. ہاں ہوگا، لازمی ہوگا
جی. تو یہ آپ نے دیکھ لیا جی کہ جن کے مرے ہیں لوگ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کل ہم آپ کو ایک اور اس طرح کی ویڈیو دکھائیں گے، اور آپ پھر خود ڈیسائیڈ کریں کہ جناب کون سچ بول رہا ہے اور کون سچ نہیں بول رہا ہے. اور ہم آپ کو وہ گاڑی دکھائیں گے رینجر اور پولیس کی جو کہ لوگوں کو رونتے ہوئے جا رہی تھی، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. اچھا جناب، سپریم کورٹ جو آف پاکستان جو ہے اس نے آج ڈکلائن کر دیا ہے وربل ریکویسٹ جو ایک ان کو کی گئی تھی کہ یہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کے اندر اسلام آباد میں، اس پہ سو موٹو نوٹس آپ لیں. یہ ہیئرنگ جو ہے یہ کے پی کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو تھے وہ لے کر آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ ڈیتھس تو دونوں سائڈس پہ ہوئی ہیں، تو کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے اس کے اوپر سو موٹو نوٹس دے. جسٹس مسرت ہلالی جو ہے انہوں نے کہا جی کہ آپ اس طرح کے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہاں پہ سپریم کورٹ کے پروسیڈنگز میں نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح ہیڈ آف بینچ جو ہیں جسٹس امین اللہ خان، انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم اس طرح کے میٹرز کو ایڈریس نہیں کر سکتے ہیں جو کہ کورٹ کے سامنے پیش ہی نہ کیے جائیں. جسٹس جمال مندوکیل جو ہیں انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم ان ایشوز پہ جو کہ کورٹ کے پریویو کے باہر ہیں ان کے اوپر ہم کوئی بھی کامنٹس نہیں دیں گے. یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ انلیس اینڈ انٹل جن کے کوئی ڈیتھس ہوئی ہیں لوگوں کی، وہ جس وقت تک ایف آئی آر نہیں لکھوائیں گے، ان کی کاپیز نہیں لے کر آئیں گے، مقدمہ فائل نہیں کریں گے، تو اس کے بغیر جو ہے آواز سپریم کورٹ کے کوئی جسٹس کا کوئی بیان دینا جو ہے یا بات کرنی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو جناب بے تحاشا فیئرس کلیشز ہوئے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز اور لا انفورسمنٹ کے لوگوں کے بیچ میں اسلام آباد کے اندر، اور جو ہے اس کے اندر جب یہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اب جو انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب نے آج رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسلام آباد میں کہا ہے کہ افغان نیشنلز جو ہیں اسلام آباد میں وداؤٹ پرمیشن نہیں رہ سکیں گے آفٹر ڈسمبر 31st. انہوں نے کہا جی کہ آفٹر 31st ڈسمبر اگر وہ رہنا چاہیں گے پاکستان اسلام آباد کے اندر، تو پھر ان کو ڈی سی آفس میں سے این او سی لینا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اسلام آباد کے آئی جی پی نذیر علی رضوی بھی تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو افغانز ہیں وہ ٹیررزم میں انوالوڈ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو این او سی دیا جائے گا اسلام آباد میں رہنے کا. انہوں نے یہ جو پی ٹی آئی کے بیچ میں وائلنس ہوئی ہے اس کو بہت زیادہ کنڈیم کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کلیشز جو تھے یہ ڈائریکٹلی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیے تھے، اور پھر اس کی وجہ سے پھر جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ان کے ساتھ جو ہے وہ نپٹنا پڑا. انہوں نے کہا جی کہ 610 پروٹیسٹرز جو ہیں ہم نے ان کو اریسٹ کیا ہے، 200 گاڑیاں ہم نے سیز کی ہیں، اس کے علاوہ ऑयल्स जो हैं वो भी हमने जो है वो फाइंड आउट किए हैं। वो कहते हैं जी कि अब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी गाड़ियां हैं, घर हैं जिसके अंदर ये सीज गाड़ियां जो हैं वो पार्क की गई हैं। उन्होंने कहा जी कि 19 अफगान्स जो हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दानियाल चौधरी साहब ने जनाब आज आमिर साहब इनका तो आज बयान सुनने वाले, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है। इन्होंने गवर्नमेंट को बड़ी मुबारक दी है। इन्होंने कहा जी बहुत मुबारक हो गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने कोई हाई हैंडेडनेस नहीं दिखाई, कोई वेपन्स नहीं चलाए प्रोटेस्टर्स के ऊपर। वाह 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 क्या बात है दानियाल चौधरी साहब, 100 बंदा एवं ही मर गया फिर हैं। लेकिन आज जो अफसोस की एक और खबर आई है कि सुलेमान शाह राशदी जो कि फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं और सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने आज रिजाइन कर दिया है इन सॉलिडेरिटी विद पीटीआई। उन्होंने कहा जी कि जो मैसकर मैंने डी चौक के ऊपर देखा है उसके बाद मैं, ये उन्होंने वर्ड उनके वर्ड हैं, वो कहते हैं जी मैं मतलब बहुत ही खराब वर्ड यूज करते हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं रह सकता, तो मैं ये इतना मैसकर देख के भी मैं इस गवर्नमेंट को सर्व नहीं कर सकता हूं। तो बस जनाब ये जो है खतरनाक है, ये बिल्कुल इन्होंने जो है ना, जो अब पता नहीं ये सही है कहना कि नहीं है, कि इन्होंने एक जंग छेड़ दी है मुल्क के अंदर और बहुत इनके इसके बुरे इनको अंजाम देखना पड़ेगा। अच्छा जनाब, 3 लोगों की फिर से आज डेथ हुई है। ये जो कंटिन्यूड वायलेंस जो कुरम एजेंसी के अंदर चल रही है लास्ट थर्सडे से, और ये उस वक्त शुरू हुई थी जब 40 जो ट्रैवलर्स थे, जो पैसेंजर्स थे, वो एक कॉन्वॉय के अंदर जा रहे थे और उनको एम्बुश करके मंदोरी चरखल के एरिया के अंदर लोअर चक्कर खेल का जो एरिया है लोअर खुरम में उसमें मारा गया था। दो दिन के बाद फिर 21 लोगों की डेथ हुई थी जो गन फाइट्स हुई थी बगम विलेज के अंदर। ये जो है क्लैशेस कंटिन्यू कर रही हैं, हालांकि जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने इनके बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में जो है सीज फायर कराया था, यानी कि सुन्नीज और शियाज के बीच में, लेकिन फिर भी ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है और ये कंटिन्यू कर रही है गोजा गरी और मतासंगर और कंज अलीजई एरिया के अंदर। इसके अलावा 3 गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको भी टारगेट करके किया गया है मिस्क्रियंट्स की तरफ से। कुरम के जो डीसी हैं जावेदुल्ला महसूद, उन्होंने कहा जी कि अब एक ग्रैंड जिड़गा जो है यहां पे बिठाया जाएगा हंगू ओरकजई और कोहाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसको जो है कोहाट का जो डिविजनल कमिश्नर है वो इसको लीड करेगा ताकि ये हॉस्टिलिटीज जो है यहां पर खत्म कराई जा सके। इसके साथ साथ जो रोड्स बंद कर दी गई थी उसकी वजह से खाने पीने की चीजों में और मेडिसिन के अंदर बहुत ज्यादा शॉर्टेज जो है वो आ गई है। ये तमाम के तमाम इलाके के लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स उस वक्त शुरू हुई हैं जिस वक्त ये जो कबायली एरिया था, ट्राइबल एरिया था, इसको केपी के साथ मिला दिया गया है और जिरगा सिस्टम यहां पर खत्म कर दिया। पहले जहां पर जब भी कोई प्रॉब्लम होते थे जिरगा बैठता था और इसको सॉल्व करता था, बहरहाल अब जिरगे की तरफ ही जा रहे हैं और वो ही इनके बीच में जो है अब जो है सुलह सफाई कराएगा। वाइस चेयरमैन ऑफ चाइना सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जनरल जैंग जूजिया जो हैं वो आए हुए हैं पाकिस्तान और उन्होंने बड़ी तारीफ की है पाकिस्तान मिलिट्री की फॉर इट्स रिजॉल्व टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। उन्होंने कहा जी कि अपनी मीटिंग में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के साथ एट जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी के, हम अपना जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो मैटर्स हैं उन पर फोकस करेंगे, रीजनल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन इनको हम आगे लेकर जाएंगे। उनके साथ एक बहुत हाई लेवल डेलीगेशन भी आया हुआ था, उन्होंने भी फिर जो है इनके साथ मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ पाकिस्तान में मुलाकातें की हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने चाइनीज लीडरशिप की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने के लिए तारीफ की है। हिंदुस्तान के अंदर भी जनाब बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी लड़ाइयां चल रही हैं। आज मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन वीरन सिंह, उन्होंने भी कहा जी कि अब हमने एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन जो है मिलिटेंट्स के खिलाफ शुरू कर दिया है और ये जितने इलीगल आर्म मिलिटेंट्स हैं इनको जो है अब पकड़ा जाएगा, उनको हंट बल्कि किया जाएगा। ऑपरेशन जो है वो जीरी बैम से शुरू किया जा रहा है क्योंकि वो एपी सेंटर है वायलेंस का। ये उस वक्त शुरू हुआ जिस वक्त 6 औरतें और बच्चों को फ्रॉम मिताय कम्युनिटी को मारा गया, उसमें से एक टॉडलर भी था जिसकी की उम्र सिर्फ 8 महीने थी। और ये जो लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ इसमें फिर 24 कुकी मिलिटेंट्स जो थे उन्होंने अटैक किया था पुलिस स्टेशन जो है वो बोरो बेकरा का उसके अंदर और 2 सीनियर सिटीजन को भी मारा था। इसके बाद इन्होंने जो कुछ औरतें और बच्चे किडनैप किए थे उनकी फिर बॉडीज जो थी वो समंदर के ऊपर रिवर के ऊपर तैरते हुए मिली थी। तो इन सब को करने के लिए उन्होंने कहा जी कि हम सेंटर से भी जो है बहुत सारे एडिशनल फोर्सेज मंगवा रहे हैं तो इन सब का जो है खत्म इनको सफाया किया जाएगा। यूपी की गवर्नमेंट जो है जी वो भी अब ये जो संबल کابل کے اندر وائلنس ہوا ہے. آپ کو پتہ ہی, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ شاہی جامعہ مسجد جس کو کہ بڑے عرصے سے بابر کے زمانے سے یہ مسجد بنائی تھی, جس کے بارے میں پھر کہا گیا کہ نہیں جی یہ تو ہندو مندر تھا جس کو ڈھا کے مسجد بنائی, یعنی کہ 526 500 سال پہلے اب ان کو خیال آ گیا. تو یہ اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ لڑائی جھگڑا جب ہوا تو لوگوں نے پتھر مارے پولیس پہ, پولیس نے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیے, یہ سارے جو ہے مسجد کے گرد جمع ہو گئے تھے. پہلے جی کورٹ کے کہنے پہ ایک سروے ہوا, پھر دوسرا سروے, جب دوسرا سروے ہوا تو لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ پھر سیکورٹی فورسز کے ساتھ ان کے کلیشز ہوئے. اب پولیس کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے 25 انڈیویجلس کو پکڑا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جی آج بہت سارے جو مسکرینٹس تھے ان کے مطابق ان کی جی تصویریں بھی چھاپی, لیکن کورٹ نے بعد میں کہا کہ یہ سارے پوسٹرز جو ہیں یہ لگائے ہیں شہر میں, اس کو اتارو. سات جو ہیں وہ ایف آئی آرز لکھی گئی ہیں, اس کے اندر ضیاء الرحمان برگ جو کہ سماج وادی پارٹی کے ایم پی ہیں فرام سنبل, اور سہیل اقبال سن آف ایس پی لوکل ایم ایل اے اقبال محمود, ان کو اور 2750 ان آئیڈینٹیفائیڈ سسپیکٹس جو ہیں ان کے خلاف ایف آئی آرز اور بھی لکھی گئی ہیں, اور ان کو اب پولیس ڈھونڈ رہی ہے. ایک انہوں نے کہا جی کہ میجسٹیریل انکوائری جو ہے وہ بھی بٹھائیں, اور جتنے لوگ اس میں ریسپانسبل تھے انریسٹ میں ان کو سزائیں دی جائیں گی. تو لوگوں کا خیال ہے کہ جی زیادہ تر مسلمانوں کو بھی پکڑا جائے گا اور انہی کو سزا دی جائے گی, کیونکہ ویسے بھی گھر دکانیں اور گاڑیاں انہی کی جلائی گئی ہیں. تو جناب بس ایک غلط فیصلہ جب آپ کرتے ہیں نا تو پھر آپ اس کے ریپرکشنز جو ہیں آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں. ضیاء الحق صاحب نے بڑا ہمارے افغان بھائی کر کے بڑا روئے پیٹے تھے اور ان کو گلے سے لگا لیا تھا نا جی, تو اب دیکھیں اپنے ملک میں کیا ٹیررزم چلتی ہے اور کیا کچھ یہاں پہ ملک میں چل رہا ہے. اسی طرح جو چندر چور صاحب نے جو انڈیا کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ایک بابری مسجد کا جو اس نے غلط فیصلہ کر لیا ہے, تو اب یہ کٹے کھلتے جائیں گے اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی کئی اب مسجدیں جو ہیں, ابھی پہلے بھی گیان واپی مسجد کا ہوا ہے, اب یہ سنبل کی مسجد کا, اب آپ دیکھتے جائیں اور بھی آتے آنے والے دنوں میں آئیں گے. اچھا جناب 2023 میں آپ کو پتا ہی ہے کہ سورج پنچولی کو ایکوٹ کر دیا تھا ابیٹمنٹ ٹو سوئسائڈ چارجز ان جیا خان سوئسائڈ کیس. آج اس کی جو ماں ہیں زرینہ وہاب صاحبہ وہ آ جائیں ہیں, انہوں نے کہا جی کہ میرے بیٹے کے اوپر تو بلا وجہ کا الزام ہے, جیا علی جس طرح کی لڑکی تھی اس نے اس سے پہلے بھی 4 سے 5 دفعہ سوئسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی, مگر بدقسمتی سے جب میرا بیٹا اس کی زندگی میں آیا تو اس نے اپنی جان جو ہے وہ لے لی, ہم نے بہت زیادہ جھیلا ہے اس سلسلے میں, 10 سال لگے اس کیس کو فائٹ کرنے میں, لیکن فائنلی میرا بیٹا باہر ہے, لیکن میرے بیٹے کا جو فلمی کریئر تھا وہ پوری طرح سے برباد ہو گیا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جس وقت آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ جھوٹ آپ کا لون کی طرح جمع ہوتا رہتا ہے اور پھر وہ انٹرسٹ کے ساتھ آپ کو واپس آتا ہے. کرما از اے بیڈ تھنگ انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا جی کہ میں اپنا منہ نہیں کھولنا چاہتی ہوں کہ یہ کس طرح کی لڑکی تھی, بہرحال جو کوئی اس کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے کہ وہ کیسی تھی. تو آج ظاہر ہے کہ ماں جو ہے وہ ذرا ایموشنل ہوگی اپنے بچے کے لیے, ماں تو ماں ہی ہیں ظاہر ہے. اور جناب بڑے عرصے سے خبر آ رہی تھی کہ ڈان 3 جو ہے وہ جو رنویر سنگھ کے ساتھ آنے والی ہے وہ شاید شیلف کر دی گئی ہے, لیکن یا اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. تو آج جو میکرز ہیں فلم کے ایکسل انٹرٹینمنٹ والے, وہ جو ان کے جو سپوکس پرسن ہیں, انہوں نے کہا جی کہ یہ فلم تو ویسے ہم نے پلان کی تھی کہ یہ جون 2025 میں آئی تھی, لیکن اس کی شوٹنگ پوسٹ پون کرنی پڑی کیونکہ بہت ساری جو ٹیم تھی اس کے کمٹمنٹ کے بہت سارے ایشوز تھے, لیکن میکرز اور رنویر سنگھ جو ہیں دے آر آن سیم پیج اور ٹائم لائن ابھی بھی چینج نہیں ہوا ہے, یہ فلم پوسٹ پون نہیں کی گئی ہے, جو خبریں ہیں وہ جھوٹی ہیں اور یہ فلم جو ہے آئے گی جلدی. تو ٹھیک ہے جناب, اچھی بات ہے. رنویر کپور اور عالیہ بھٹ کا جناب جو شوٹنگ کر رہے ہیں آج کل سنجے لیلا بھنسالی کی لو ساگا لو اینڈ وار کے لیے, اس کے کچھ نیو لیکڈ جو پکچرز ہیں وہ سامنے آئے ہیں, جس میں بڑے دونوں ریٹرو لک میں دونوں نظر آ رہے ہیں. جو رنویر صاحب ہیں انہوں نے بڑا کچھ زبردست سوٹ ووٹ بوٹ پہنے ہوئے ہیں اور بڑے اپنے سلیکلی اپنے بالوں کو پیچھے کیا ہوا ہے, اور لگ رہا ہے کہ یہ واقعی جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایئر فورس پائلٹ کی طرح سرو کریں گے اس فلم میں, تو وہ ایز ایئر فورس یعنی کہ پلے کریں گے اس کا رول, تو وہ ویسے ہی کچھ دکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عالیہ جو ہیں انہوں نے بڑا جی ونٹیج قسم کا ان کا لک ہے, اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کی وائب ہے یہ بامبے ویلوٹ جیسی وائب ہے, جو آئی تھی نا کچھ عرصہ پہلے مووی بامبے ویلوٹ, انہوں نے کہا جی کہ عالیہ کا جو لک ہے وہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کہ جیکلین کینیڈی. او مائی گاڈ, مطلب یہ لوگ بھی پتا نہیں کتنے تک کتنے ملا نہیں پائی جان, بڑی خوبصورت ہے عالیہ بھٹ پر ایڈی بھی کوئی گال نہیں ہے, جیکلین کینیڈی کا اپنا ایک سٹائل تھا, تو آپ اتنا بھی وہ भावक ना हो जाए करो, ठीक है जनाब। और जनाब हमारे शहीन शाह अफरीदी जो हैं वो ओडीआई मेंस आईसीसी बोलिंग रैंकिंग में वन नंबर थल्ले आगे हैं और टॉप पे चला गया है अफगानिस्तान का लेग स्पिनर राशिद खान, और साउथ अफ्रीका के केशव महाराज जो हैं वो अब आईसीसी मेंस ओडीआई बोलिंग के रैंकिंग में थर्ड नंबर पे आए हैं। हैरिस रौफ जो हैं, हालांकि उन्होंने बड़ी जबरदस्त अभी बॉलिंग की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर भी वो 15th नंबर पे स्लिप होकर आगे हैं। साइम अयूब जो हैं वो जंप किए हैं 80 प्लेसेस टू 90th पोजीशन इन मेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग। अबाबर आजम जो हैं अभी भी टॉप पे हैं। जसप्रीत बुमराह जो हैं ही इज ऑन टॉप ऑफ टेस्ट बोलिंग रैंक, ठीक है जी। ऐसे वर्ल्ड बॉक्सिंग बैक्ड बाय न्यूली फॉर्म्ड एशियन बॉक्सिंग कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि जी हम अब प्रमोट करेंगे बॉक्सिंग को रीजन के अंदर। ये अनाउंसमेंट जो है उस वक्त आई है जब 25 आउट ऑफ 36 मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग एशियन बॉक्सिंग कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने वोट किया कि हमको जो है आईबीए के साथ अफिलिएट करना चाहिए। एएसबीसी के जो प्रेसिडेंट हैं पिचाई चौहान वजीरा, उन्होंने रिजाइन कर दिया और उन्होंने कहा जी कि हम अपनी जो है एक एशियन कॉन्फेडरेशन बनाएंगे अंडर वर्ल्ड बॉक्सिंग, और इसके अंदर बड़ा जो है वो ट्रांसपेरेंट फेयर और सस्टेनेबल तरीके से इसको स्पोर्ट्स को एशिया में चलाएंगे। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है जनाब वो अब सेमीफाइनल में आ गई है ऑफ ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 आफ्टर 10 विकेट विक्ट्री अगेंस्ट नेपाल एट गनी इंस्टीट्यूट क्रिकेट ग्राउंड, और इनको 101 का टारगेट दिया गया था जो उन्होंने 6.4 ओवर्स में पूरा किया, और ये इनकी चौथी विन है। उसमें आपको पता ही है कि पहली विन जो है जिसमें इनको जो है वो दिया गया था विक्टोरियस कंसिडर किया गया था, क्योंकि इंडिया जो थी उसने कहा था जी हम नहीं आ रहे पाकिस्तान में खेलने के लिए, तो एक वो और तीन जो है उसके बाद इन्होंने बैक टू बैक विन्स ली हैं। पाकिस्तान के पेसर्स अहमद दानियाल एंड शाहनवाज धानी, इनको जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थर्ड ओडीआई आने वाला है उसमें से रूल आउट किया गया है। पीसीबी ने कहा है कि अहमद जो है उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी आया है और धानी जो है उसको एंकल इंजरी आया है ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन, तो अब ये दोनों जो हैं स्कैन्स और जो क्लिनिकल असेसमेंट है उसके दे आर अंडर गोइंग दैट, तो अगर वो ठीक आएंगे तो फिर ये रिटर्न करेंगे। अलबत्त इनको अभी के लिए रिप्लेस किया जा रहा है बाय अब्बास अफरीदी एंड जहान दाद खान, और ये दोनों जो हैं बुलाओ अब पहुंच गए हैं, तो अब लग नहीं रहा कि ये दोनों शायद अहमद दानियाल और शाहनवाज खेल सकेंगे। बहरहाल एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट सुफियान खान एंड हमजा फयाज, इन दोनों ने जबरदस्त किस्म का खेलते हुए पाकिस्तान को कमांडिंग 7-2 विक्ट्री दिलाई ओवर चाइना इन ऑन गोइंग जूनियर हॉकी एशिया कप 2024। तो जनाब हमारी हॉकी जो है वो भी अब अच्छा करने लगी है माशाल्लाह, तो बॉयज आर डूइंग वेरी वेल। तो ये थी जनाब हमारी आज की खबरें सारी।
बहुत शुक्रिया, ये थी हमारी जो है आज की गर्मा गर्म रंगारंग खबरें।
हालांकि मैं तो खामोशी से बैठी थी, बोल तो तुम रहे थे।
मैं बहुत बोलता हूँ।
हाँ बहुत बोलता
तो अब मैं ऐसा करता हूँ,
शुक्र है मान गए आमिर,
छुट्टी दें और खुद भी छुट्टी लें।
हाँ
और जाके जो है वो अपना
एंजॉय का मजा लें।
नहीं
ओपन माइक भेजे,
ओपन माइक कैफे जाए जनाब डंडास और डिक्सी के इंटरसेक्शन पे ओपन माइक कैफे, जबरदस्त खाना,
आमिर का फेवरेट रेस्टोरेंट,
तो आप लोग जरूर पहुंचे वहाँ।
ठीक
है जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ शामिल होने का। एज यूजुअल इंशाल्लाह जिंदगी रही और आप जिंदा रही तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी।
तो तुम तो कह रहे थे मैं पीली शर्ट पहन के आऊंगा, वो तुम
पीली बता, नहीं नहीं पीली के लिए फिर मैं बता दूंगा।
अच्छा बता, ताकि मैं नीली पहन के,
हाँ जिस दिन मैं पीली पहनूंगा उस दिन मैं बता दूंगा कि आज
ठीक
पहन
रहा हूँ। ओके
ये हो गया, ठीक हो गया। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शामिल होने का, तमाम सामईन का और नाजरीन का बहुत शुक्रिया जो हम ई आवाज टीवी पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ई आवाज .com पर भी। पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आरफा मुजफ्फर साहब की तरफ से, माजी जमाल साहब की तरफ से और हमारे इंजीनियर जिशान अहमद की तरफ से इजाजत दीजिए। मैं आपका होस्ट आमिर अहमद, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। I'm not afraid to die।
कोई गम रुला ना सकेगा कि तू है बहाना मेरी हसी का। नसीब थे रातें सब चरागो वाली सारे दिन ईद थे। चाहते थे चांद पर दूरियों की क्या फिकर जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे। तेरी जुदाइयों में बरसे वो नैना भी सादर्द मिलके जिनको रुला न पाए तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए जितना बुलाना चाहा जितना बुलाना चाहा तुम याद आए तुझे भूलना तो चाहा लेकिन रात आंखें सोए सुकून से वो रात आती क्यों नहीं जिस रात आंखें सोए सुकून से वो रात आती क्यों नहीं पिछले बरस तू बाहों से जा चुकी भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए जितना भुलाना चाहा जितना भुलाना चाहा तुम याद आए तुझे भूलना तो चाहा I'm चाह।